श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की, ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रंथराज श्रीमद महापुराण की, ताई गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 46, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। श्री राजोवाच नंदः किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयाम्। यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। नन्दः किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्। यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। श्रीराजोवाच नन्दः किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्। यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। श्रीराजोवाच नन्दः किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्। यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। माता जी, श्री राजोवाच महाराज परीक्षित ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी से और आगे पूछा। नंदह महाराज नंद से, किम क्या अकरोत किया ब्रह्मन, हे विद्वान ब्राह्मण, श्रेयः पुण्य कर्म तथा तपस्या एवं जिस तरह उन्होंने प्रकट किया, महाउदयम जिससे उन्हें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई, यशोदा माता यशोदा च भी महाभागा अत्यंत भाग्यशालिनी, पपौ पिया यस्याह जिसका स्तनम स्तन का दूध, हरि ही श्री भगवान ने। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाह सुकृति नोर्जुन, सुकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं आ सकता। श्री भगवान के पास चार प्रकार के पुण्यात्मा पहुंचते हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा यशोदा इन सबसे बढ़कर थे, इसलिए परीक्षित महाराज ने स्वाभाविक रूप से पूछा, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में किस तरह के पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि की व्यवस्था प्राप्त हो सकी। यद्यपि नंद महाराज तथा यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में स्वीकार किया गया है, फिर भी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज से अधिक भाग्यशालिनी थी, क्योंकि नंद महाराज कभी कभी भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ते भी हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा के भी भगवान श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण के शिशुकाल से बाल्यकाल तथा बाल्यकाल से युवावस्था तक माता यशोदा सदैव भगवान श्री कृष्ण की संगति में ही रहीं। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए थे तब वे भी वृंदावन जाते थे और माता यशोदा की गोद में बैठ जाया करते थे। अतः माता यशोदा के भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा, यशोदा च महाभागा, हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं और साथ साथ इस्कॉन डिजायट्री पर और पूना के संपूर्ण कांग्रेगेशन NVCC और राधा कुंज बिहारी मंदिर के समस्त कांग्रेगेशन को भी हम लोग परोक्ष रूप से स्वागत। तो आज के चर्चा का विषय है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम के माध्यम से ब्रज भक्ति का प्रचार किया और इस प्रचार को सिद्ध करने के लिए सबसे प्रमुख उन्होंने ऐसे कौन से गुण पर प्राथमिकता दी, और वो है त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो प्रसंग आता है, जैसे हमने पिछले सप्ताह भी चर्चा की, कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं और वहां पर वृंदावन से भ्रमण करते हुए आते हैं श्री वल्लभ भट्ट जी। और श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट के साथ बड़ा प्रेम का संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके हृदय के भीतर कुछ रंच मात्र अभिमान दिखता है। तो महाप्रभु अपने आसपास के सभी भक्तों वैष्णव गणों की स्तुति करना आरंभ करते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के गुणों की स्तुति की, और फिर अब महाप्रभु मुड़ते हैं रामानंद राय की ओर, और रामानंद राय की ओर मुड़कर उनकी स्तुति करना आरंभ करते हैं। और महाप्रभु कहते हैं भट्ट जी को, क्या रामानंद राय कृष्ण रसेर निधान ते हो जानाइला कृष्ण स्वयं भगवान। वास्तव में कृष्ण भगवान हैं, इसकी जानकारी मुझे किनसे प्राप्त हुई? तो रामानंद राय ने मुझे बताया, और इसलिए श्रीपाद रामानंद राय कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, भले भूतपूर्व जीवन में बहुत बड़े राजनीति में और पूरे मद्रास प्रोविंस के गवर्नर के रूप में थे, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। रामानंद राय कृष्ण रसेर निधान, वो कृष्ण के रस के महासंपत्ति है, खान है। और तेहो जानाइला कृष्ण स्वयं भगवान, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि श्री कृष्ण कैसे भगवान हैं। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ करने वाले थे, उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको कहा, रामानंद राय अच्छे गोदावरी तीरे अधिकारी होते हो विद्यानगरे। आप जब अपने दक्षिण भारत की यात्रा में जाओगे तो सबसे प्रमुख व्यक्ति जिनसे आपको भेंट करना है उनका नाम है रामानंद राय, और वो निवास स्थान उनका कहां पर है? विद्यानगर। शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा न कोरिबे अमर वचन तारे अवश्य मिलिबे। उन्हें कोई सामान्य इस जगत के कोई सामान्य राजनीति में रचे पुचे व्यक्ति की भांति भौतिकवादी चेतना वाले व्यक्ति मत समझो उनको, और ऐसा विचार करके आप आध्यात्म के दृष्टिकोण से इनका कोई महत्व नहीं है ऐसा विचार करके उनकी उपेक्षा मत कीजिए। उपेक्षा न करिबे अमर वचन तारे अवश्य मिलिबे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अवश्य इनसे मिलिए। और फिर महाप्रभु विचार करने लगे कि भाई इनके अंदर ऐसी क्या वैशिष्ट्य है जिसके कारण मैं मिलूं, ये कौन सी विभूति है? अलौकिक वाक्य चेष्टा तारे न बुझिया परिहास करिया छिन तारे वैष्णव बोलिया। अलौकिक वाक्य चेष्टा, इनके गुण, इनके वार्तालाप, कृष्ण कथा के ऊपर इनका पकड़, इस सिद्धांत के विषय में जानकारी तारे न बुझिया, हम भी पहले नहीं पहचान पाए, और पहले हम इनका उपहास करते थे। परिहास करिया छिन तारे वैष्णव बोलिया, और हमको लगता था ये तो वैष्णव है, सामान्य है, इस प्रकार इनका हम हास परिहास करते थे। तो वास्तव में जब उनसे हम भेंट किए तब फिर समझे कि वास्तव में विभूति क्या है। इसलिए श्रीपाद रामानंद राय के साथ महाप्रभु जब मिलते हैं, रामानंद राय अति विनम्र भाव से महाप्रभु को कहते हैं, रामानंद राय अपनी ओर से कोई महाप्रभु को कथा सुनाने की योजना में नहीं बैठे थे कि अब महाप्रभु आएंगे फिर मैं लेक्चर दूंगा फिर महाप्रभु सुनेंगे फिर जगत में प्रसिद्धि होगी, लोग समझेंगे कि हम भी कुछ हैं। आमानिस्तारिते तोमार इहा आगमन परम दयालु तुमि पतित पावन। तो वो तो महाप्रभु को देखकर कहते हैं आप तो हम जैसे पतितों का उद्धार करने आए हो।
महंत स्वभाव ऐ तारिते पामर निज कार्य नहीं तब जाता रघर।
महात्माओं का ये लक्षण होता है कि अपना कोई निजी स्वार्थ न होते हुए भी वो विभिन्न स्थानों में भटकते फिरते हैं, जगत में भगवत ज्ञान वितरित करते हैं। तो इसलिए जब महाप्रभु उनके इस विनम्रतापूर्ण शब्दों को सुनते हैं तो महाप्रभु बारंबार आग्रह करते हैं कि आप हमें ये ज्ञान दीजिए। तब महाप्रभु के समक्ष जब संपूर्ण गौड़ीय सिद्धांत के शिरोमणि ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, महाप्रभु उसको सुनने के पश्चात कहते हैं,
प्रभु कहे आगे कह सुनिते पाए सुखे अपूर्वामृत नदी बहे तुमार मुखे।
आपके मुख से ये अभूतपूर्व कृष्ण कथा की अमृत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें मैं निरंतर निमग्न होना चाहता हूं। और फिर महाप्रभु ने अपने हृदय की भावना को प्रकट कर दिया कि सार्वभौम भट्टाचार्य जब आपके विषय में हमें जानकारी जी संकेत किया था कि इनसे भेंट कीजिए, ये भले राजनीति में रचे पिछे व्यक्ति हैं लेकिन सामान्य नहीं, भौतिक चेतना से परे हैं। तब मुझे उस समय इतनी जानकारी नहीं थी और हम सोच ही रहे थे कौतूहलवश के कौन होंगे, लेकिन आपके मुखमंडल से जो कृष्ण भक्ति के सिद्धांत का विस्तृत ज्ञान हमने प्राप्त किया उसको सुन के हम यही कह सकते हैं,
जय जय छे सुनिलू तय छे देखिलू तोमार महिमा राधा कृष्ण रस ज्ञानेर तुमी सीमा।
कि जैसे आपके विषय में हमने सार्वभौम भट्टाचार्य से सुना था तैच्छे देख, वैसे ही हमने आपको अपने समक्ष पाया है। राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा, राधे ज्ञान रस की आप सीमा हो। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से दक्षिण भारत में भेंट करने के पश्चात, कृष्ण कथा सुनने के पश्चात महाप्रभु ने बड़े ही हृदय पूर्वक उनसे प्रार्थना की किया कि आप ये न के न प्रकारे न अपने सभी जितने भी आपके उत्तरदायित्व हैं उससे सेवानिवृत्त होकर जगन्नाथपुरी में आकर हमारे साथ कृष्ण कथा का आदान प्रदान निरंतर करते रहो, आप हमें अपना संग लाभ दो। तो महाप्रभु ने निवेदन करने पर फिर रामानंद राय ने जाकर प्रताप रुद्र महाराज से याचना की, तब फिर प्रताप रुद्र महाराज ने उनको सेवानिवृत्त करके जगन्नाथपुरी में उनको रख लिया। और प्रताप रुद्र महाराज ने रामानंद राय को कहा, हाँ प्रभु ने निवेदन किया है कि आप यहां पर आओ और उनको अपना संग दो, इसलिए अभी जो तुमको वेतन मिल रहा है वही वेतन और वही सारी व्यवस्थाओं के साथ आपको हम राजकीय कार्यों से सेवानिवृत्त करके पूर्ण चौब महाप्रभु के साथ कृष्ण कथा और कीर्तन के लिए हम व्यवस्था करते। सोचिए केवल कथा और कीर्तन का पगार। इसको सुनकर कई लोगों के मन में इच्छा जागृत हो गई कि हमारे साथ भी ऐसा होता होता। तो इसलिए यहां पर रामानंद राय के विषय में महाप्रभु कहते हैं,
ताते प्रेम भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि राग मार्गे प्रेम भक्ति सर्वाधिक जानी।
तो कहते हैं कि प्रेम भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि, वास्तव में रामानंद राय से मैंने इस बात की कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं उनके चरणों के प्रति ताते प्रेम भक्षार्थ शिरोमणि, उनके चरणों में जो प्रेम भक्ति है वो हर प्रकार की उपलब्धियों में श्रेष्ठ है। दैट इज द हाइएस्ट
पुरुषार्थ शिरोमणि, और उस प्रेम भक्ति के अंदर भी जो अविहीन प्रेम है जिसको कहते हैं राग मार्गे प्रेम भक्ति सर्वाधिक जानी। तो राग मार्ग के अंतर्गत ब्रज के भक्तगण लगे रहते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान से विहीन जो केवल भक्ति जो ब्रजवासीगण प्रकट करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। नायं वो भगवान देही नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मताम इह। नवम अध्याय में दशम स्कंद के वर्णन करते हैं कि जैसे यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को बंधन में लाने का प्रयत्न करती है और बारंबार प्रयत्न करने के पश्चात जब उसमें सफल हो जाती है तो शुक्र कहते हैं कि संपूर्ण दामोदर लीला के पीछे मूल सिद्धांत यही है। नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत, कि देही नाम गोपिका सुत अर्थात यशोदा माई ने जिस प्रकार प्रेम पूर्वक सुलभता से श्री कृष्ण को बंधन में लाया वैसा ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मताम, यह कोई ज्ञानी और कोई अन्य योगी भगवान को बंधन में नहीं ला सकता। तो इसलिए ब्रज की भक्ति सबसे श्रेष्ठ बताई गई है और महाप्रभु इस भक्ति का प्रचार करने आए, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि इसके विषय में ज्ञान मुझे रामानंद राय के चरणों में बैठकर श्रवण करने से प्राप्त हुआ। शुद्ध भावे सखा करे स्कंधे शुद्ध भावे ब्रजेश्वरी कोरे न बंधन। शुद्ध भाव में कभी सखा महाप्रभु के सोहन करते हैं और कभी शुद्ध भाव में ब्रजेश्वरी अर्थात यशोदा माई कृष्ण को बंधन में लाती है। मोर सख मोर पुत्र ए शुद्ध मन अत ए शुक व्यास कोरे प्रशंसन। शुक व्यास इसका इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं, अत एव शुक व्यास कोरे प्रशंसन, क्योंकि जो ब्रज की है वो ऐश्वर्य से विहीन है और मोर सखा मोर पुत्र ई शुद्ध मन, इस प्रकार का भाव है कि जगत के संपूर्ण जीव भगवान के सामने जाकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप हमारी रक्षा करो आप हमारा पोषण करो, और ब्रजवासी कृष्ण के समक्ष जाकर कहते हैं हम आपका पोषण करेंगे हम आपका रक्षण करेंगे। मोर पुत्र मोर सखा ई शुद्ध मन अत एव शुक व्यास कोरे प्रशंसन। इसलिए व्यासदेव जी शुकदेव गोस्वामी नारद मुनि इत्यादि विभिन्न प्रकार के महात्माओं के लिए ब्रज की लीलाएं बड़ी श्लाघनीय हो जाती हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या मास्यम गता नाम परदैवतेन मायाश्रिता नाम नरदारकेन साखम विजहरु कृत पुण्य पुंज। तो जितने भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र हैं जितनी गोपियां हैं सब ब्रजवासियों ने अपने पूर्व जन्म में क्या क्या पुण्यों का संचय किया इसके विषय में विश्लेषण करना लगभग असंभव है। त्रय्या च उपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमाना महात्म्यम हरेर्सा अमन्यत पुत्र का हरेर्सा अमन्यत आत्मजम। तो जब ये मृदभक्षण लीला हुई और भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल के भीतर यशोदा माई ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भी किया, उस ब्रह्मांड के दर्शन के पश्चात भी उनके हृदय के भीतर जो स्नेहिल स्वाभाविक वात्सल्य भाव था वो तनिक भी स्खलित नहीं हुआ, और इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनको तीनों लोक जिनकी पूजा करते हैं उपनिषद सांख्य इत्यादि में जिनकी सेवा होती है उनकी स्तुतियां की जाती है। उपगीयमानाम महात्म्यम, जिनकी महिमा के विषय में इस कोटि देवता पूर्ण रूपेण अवगत हैं। हरिम सा अमन्यत आत्मजम, उस कृष्ण को यशोदा माई केवल अपने आत्मज के रूप में स्वीकार की, अर्थात ये मेरा पुत्र है। और इसलिए ये पश्चात फिर शुकदेव गोस्वामी ये वाला प्रश्न पूछ रहे हैं जो इस श्लोक में प्रधान है। नंद हकिम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्, यशोदा च महाभाग पपौ अस्याः स्तनम् हरे। कि देखिए नंद मा क्या किया था, यशोदा माई ने ऐसा क्या किया था कि श्री कृष्ण उनका स्तनपान यशोदा माई का, और इस प्रकार का उनके बीच संबंध कैसे स्थापित हुआ, इतना अधिक उनके ऊपर कृपा भगवान ने। और तब जाकर ये दामोदर लीला का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने उस समय किया था। ऐश्वर्य शुद्धेर नहे ऐश्वर्य ज्ञान, अत एव ऐश्वर्य होते केवल भाव प्रधान। तो कहते हैं महाप्रभु कि ब्रजवासियों की विशेषता यह है कि ऐश्वर्य देख ले, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन करके भी, यथा श्री कृष्ण के मुखमंडल के भीतर यशोदा ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद भी ऐश्वर्य देख ले न शुद्धेर नहे ऐश्वर्य ज्ञान, ऐश्वर्य का दर्शन करने के बाद भी ऐश्वर्य का ज्ञान उनके अंदर प्रधान न हो और उसके विषय में वो अधिक ध्यान न दे, उसको किसी प्रकार से महत्व न दे, नहे ऐश्वर्य ज्ञान। इसीलिए अत एव ऐश्वर्य होते केवल भाव प्रधान। और इसलिए ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान की तुलना में जो ब्रजवासी हैं उनका केवल भाव प्रधान है। तो ब्रज का ये भाव जिसमें केवल भाव अर्थात केवल प्रेम का भाव प्रधान है, इसको अधिक महान माना गया है। सो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, अ प्योर डिवोटी सीज कृष्णास ऑपुलेंस, शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों का दर्शन करते हैं लेकिन उन ऐश्वर्यों का दर्शन करके उसे स्वीकार नहीं करते, बट डज नॉट एक्सेप्ट। और ऐसी भावना को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात अधिकांश लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में उतरते हैं, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के और अन्य सभी विग्रहों के दर्शन के लिए प्रार्थना बद्ध भावना से, सेवा परायण भाव से उनके समक्ष जब प्रकट होते हैं तो उनके हृदय के भीतर सबसे प्रमुख भाव जो प्रधान होता है वो ये कि कैसे भगवान हमारा संरक्षण करें, भगवान हमारे किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। लेकिन ब्रज का भाव जो महाप्रभु प्रकट करने आए वो ये कि कैसे हम भगवान और भगवान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, भगवान का संरक्षण किस प्रकार करें। तो इसको कहते हैं केवल भाव, और ये ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक प्रधान माना गया है। इस भाव से भगवान हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो महाप्रभु भट्ट जी के सामने रामानंद राय को संकेत करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं कि इनकी महिमा से, इनके भक्ति के ऐश्वर्य से हम ब्रज के ये इस ऐश्वर्यहीन विहीन भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की। ए सब शिखाइला मोरा राय रामानंद, अनर्गल रसवेता प्रेम सुखानंद। ये जो आपके समक्ष विभूति दर्शन दे रहे हैं ये है राय रामानंद। तो महाप्रभु सभी वैष्णव समुदाय में सबके समक्ष अपने मुखों से व्यक्तिगत रूप से उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये सब सिखायला मोरे राय रामानंद, राय रामानंद ने हमको ये सब सिखाया है। नहीं तो हमें क्या जानकारी थी, हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। और इसलिए अनर्गल रस वेत्ता प्रेम सुखानंद, और ये ऐसे कृष्ण भक्ति से संबंधित रसों के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो अनर्गल अर्थात अनर्गल वेत्ता अर्थात एक्सट्रीमली अवेयर, अनर्गल रस वेत्ता वो ऐसे रस शास्त्र और विज्ञान के विषय में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। अनर्गल रस वेत्ता प्रेम सुखानंद, और ऐसे प्रेम और प्रेम के सुख में निरंतर आंदोलित रहते हैं, इनसे हमने ये सब ज्ञान प्राप्त किया है। कहना नयाय रामानंदेर प्रभाव राय प्रसादे जानिलु ब्रजेर शुद्ध भाव। तो वास्तव में मुझे जब जब अवसर मिला मैं रामानंद राय के मुख से ये सब ज्ञान प्राप्त किया। किताब तो हमेशा रहेंगे लेकिन व्यक्तिगत रूप से श्रवण करने का सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी रामानंद राय के मुख से हमने श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया, हमने इस अवसर को बड़ा सुलभ मानकर उनके मुख से हमने ये सुना। और इसीलिए कहना न आए रामानंदेर प्रभाव, कहना न आए, कहा नहीं जा सकता रामानंद राय का प्रभाव क्या है। राय प्रसादे जानिलू, और उनके मुख से सुनने के पश्चात ब्रजेर शुद्ध भाव, ब्रज का शुद्ध भाव क्या है मैं समझ सका। तो इसलिए वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में और द्वापर युग में जब लीला करने आते हैं तो छह कारणों से वो प्रकट होते हैं। सबसे पहला कारण है रेवलेशन, अर्थात वो इस बात को लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, अपनी शक्तिमत्ता का प्रदर्शन करने, टू रिवील हिज सुप्रीमेसी एंड टू रिवील हिज ट्रांसेंडेंटल, अपनी शक्ति और अपने गुणों को, अपने दिव्य गुणों को प्रकट करने वो आते हैं। तो ये पहला कारण। दूसरा, भगवान शिक्षा देना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू एजुकेट। जो जीव भक्ति के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए हैं उनको शिक्षा देने आते हैं और उनकी विकसित करने का प्रयास करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। टू इवॉल्व देयर कॉन्शियसनेस थ्रू हिज एक्टिविटीज एंड वर्ड्स, जिससे कि इन लीलाओं को देखकर, उनका संग लाभ लेकर और उनके गुणों को देख जीव अपने विचारों को परिवर्तित करे। तीसरा, क्योंकि बद्ध जीवों का आकर भौतिक इंद्रिय विषय वस्तुओं के प्रति चला गया, कैसे इन जीवों का ध्यान मेरी ओर आ। सो थर्ड इज फॉर अट्रैक्शन, टू अट्रैक्ट द जीवास टुवर्ड्स हिम टू डिस्प्ले हिज ब्यूटिफुल कैरेक्टर। वो अपना जो है बड़ा सौंदर्यशाली चरित्र प्रदर्शित करते हैं, अपने भक्तों के साथ जो स्नेह का संबंध, अनुराग युक्त संबंध वो प्रकट करते हैं, और बद्ध जीवों के हृदय के भीतर जो सुप्त कृष्ण भक्ति है उसे जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। सो देयरफॉर ही अट्रैक्ट द जीवास। चौथा, कृष्णा वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश रेसिप्रोकेट विद दोज डिवोटीज हु हैव गिवन देयर लाइव्स। जो भक्तगण जो भगवान के दर्शन के लिए लालायित आतुर हैं उन भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए वो यहां प्रकट हो। पांचवा, भगवान जो संपूर्ण भौतिक जगत व्यवस्था समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, पथभ्रष्ट हो गई, उसको पुनर्स्थापित करने, फॉर रेक्टिफिकेशन, टू एनिहिलेट द डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। जितने लोग भगवान के सत्ता के विरोध कर रहे हैं उनको ठीक करना। और छठा, रिक्रिएशन, टू एक्सपीरियंस वैरायटी, विभिन्न प्रकार के अपने भावनाओं का आदान प्रदान करने, टू एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स, वैरायटी ऑफ इमोशंस, वैरायटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स, विभिन्न भावों को अनुभव करना करने का प्रयास से आते हैं, विभिन्न संबंधों का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, और वो ऐसी लीला करते हैं अपने ही आनंद के लिए। तो इसलिए, क्योंकि भगवान इतने भिन्न भिन्न कारणों से प्रकट होते हैं, तो सामान्य बद्ध जीव अपने सीमित बुद्धि के आधार पर, कपोल कल्पित धारणाओं के आधार पर भगवान के इस प्राकट्य के पीछे मूल कारण को इतनी आसानी से समझ नहीं पाते, और इसलिए भगवान को समझना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। इट बिकम्स कंफ्यूजिंग, बिकम्स बेविल्डरिंग, सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कितनी भ्रांत धारणाएं पैदा हो जाती हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं और सीमित बुद्धि से समझ नहीं पाते, और भौतिक व्यवस्थाओं में जुटे हुए बद्ध जीव कभी भगवान को समझ नहीं पाते। तो इसलिए भगवान के इस ब्रज लीलाओं को समझने और समझाने के लिए आचार्यगण अपने चरित्र के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से प्रकट करते हैं, तब जाकर ब्रज की भक्ति क्यों इतनी विशेष तब लोग समझ पाते हैं। तो इसलिए महाप्रभु या भट्ट जी के सामने कह रहे हैं कि भाई ये ब्रज की भक्ति को समझना इतना जटिल है कि मैं तो केवल यहां पर रामानंद राय की कृपा से समझ पाया, अन्यथा मेरे लिए संभव नहीं था इसको समझना। जब दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु जाते हैं, उस समय दक्षिण श्रीरंगम में महाप्रभु किसको मिलते हैं? श्री वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट को मिलके महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछते हैं, लक्ष्मी के नैना पायला इहार की कारण, तप करी कैछे कृष्ण पायलश। अरे वेंकट भट्ट जी, ब्रज और वैकुंठ के बीच में अगर तुलना करूं तो एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि लक्ष्मी के ने न पायला इहार की कारण, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शादि पारं, यद्वांछे आशीर्वाद चरत तपो विहाय कामान सुचिरं दृढ़व्रता। ऐसा क्यों हुआ कि लक्ष्मी जी कृष्ण के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाए वृंदावन में? लक्ष्मी केने ना पाईला इहार के कारण, इसके लिए इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन तपस्या करके तप कोरी कैचे कृष्ण पायल श्रुतिगण, कितनी श्रुतियों ने, वेदों ने भी तप करके कृष्ण को प्राप्त कर ली, लक्ष्मी को यह प्राप्ति नहीं हुई। तो महाप्रभु फिर वेंकट भट्ट को पूछते हैं, श्रुति पाए लक्ष्मी न पाए इथे की कारण, भट्ट कहे इहा प्रवेशिते नारे मुरमन। तो महाप्रभु ने कहा, रे श्रुति को मिल गया लक्ष्मी को नहीं मिल गया, इसके पीछे क्या कारण है? तो वेंकट भट्ट ने कह दिया, मेरा तो इसमें मन प्रवेश नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। और फिर उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहजे अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। देखिए महाप्रभु, मैं तो एक जीव हूं, आमी जीव, क्षुद्र बुद्धि और हमारी बुद्धि और सोचने विचारने की विश्लेषण करने की शक्ति भी बड़ी सीमित है। सहजे अस्थिर, और सहज रूप से हम अस्थिर रहते हैं। इसीलिए ईश्वरे लीला कोटी समुद्र गंभीर, भगवान की लीला समुद्र की भांति गंभीर है। उसको कौन समझ सकता है, उनको कौन समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर भी सकते हो, क्योंकि तुम्हें साक्षात सही कृष्ण सही निज कर्म, जारे जाना है सही जाने तो मार लीला मर्म। कि आपने ही ये लीलाएं की हैं, आप ही इन लीलाओं के मर्म को समझ सकते हो, आप ही समझा सकते हो। इस प्रश्न पूछने का कष्ट मत करो, आप ही उत्तर भी दो। प्रभु कहे कृष्णेर एक स्वभाव लक्षण, स्वमाधुर्य सर्व चित्ते कोरे आकर्षण। तब महाप्रभु प्रकट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक स्वाभाविक लक्षण है, और वो लक्षण क्या है, स्वमाधुर्य सर्व चित्त कोरे आकर्षण। माधुर्य से, अपने मिठास से वो सब जीवों के चित्त को हरते हैं, आकर्षित करते हैं। ब्रजलोकेर भावे ताहर चरण, तारे ईश्वर करी नहे नारे ब्रजजन। तो ब्रजवासियों की विशेषता क्या है, ब्रजलोकेर भावे पाये ताहर चरण, जो ब्रजवासियों के भाव को अपने हृदय में उतारेगा वो कृष्ण के चरणों को अवश्य प्राप्त करेगा। तारे ईश्वर करी नारे जाने ब्रजजन। ब्रजवासी कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं मानते, और जो इसी प्रकार शुद्ध भक्ति को अपनाकर कृष्ण को ईश्वर के रूप में न देखकर उनके प्रति ब्रजवासियों के भांति जो स्नेह करे वो उनको प्राप्त कर पाता है। ब्रज लोकेर भावे जयी कर ये भजन, सही जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र न। जो ब्रज के ऐसे रागात्मिका भक्तों के चरण चिन्हों में चलते हुए साधना भक्ति से आगे प्रगति करते हुए फिर रागानुगा भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति को प्रकट कर क्रमशः इस मार्ग को अपनाए, ब्रज लोकेर भावे ब्रजवासियों के इस भाव को जयी करोए भजन, जो इस भाव करेगा से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। और उस भाव में लोग ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्कंद में इंद्र जी कहते हैं, दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम तसंग मुनय सुसाधव, चरन्ति लोका व्रतम व्रणम वने भूतात्म भूता सुहृद समे गति। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने की अभिलाष होकर कई साधक निकलते हैं। विमुक्त संगा मुने सुसाधव, ऐसे मननशील जीव हर प्रकार के भौतिक इंद्र तृप्ति की कामना का परित्याग करने की अभिलाषा को पालते हुए संपूर्ण चरित्र को अपनाते हुए उनके चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चरंति लोका व्रतम व्रणम वने, विभिन्न प्रकार के व्रतों करते हैं। भूतात्म भूता सुहृद समे गति, लेकिन इन सभी जीवों में जीव हैं जो वास्तव में अपनी अभिलाषा की सफलता को अनुभव कर पाते हैं। और ऐसे जीवों का लक्षण क्या है, भूता सुहृद समे गति, ऐसे जीव वास्तव में अन्य जीवों के प्रति अपने करुणा को प्रकट करने में सफल होते हैं। भूतात्म भूता सुहृद समय गति, तो दूसरों जीवों को प्रति वो अपने अनुग्रह को व्यक्त करने के लिए तैयार रहते हैं। करुणा की भावना उनके हृदय में प्रधान होती है और ये करुणा ही वैसे बढ़ते हुए भक्ति का परिचय देता है। तो इसलिए प्रश्न उठता है कि जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं या श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का हम लोग ध्यान करते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे किस प्रकार हम अपने इस अनुभव को और तीव्र कर सकें। क्योंकि कई बार भक्त लोग कहते हैं कि भाई नाम जप करने के लिए तो हमने व्रत ले ही लिया, अब इसमें दो उपाय है नहीं, चाहे जिस उत्साह के साथ लिया न लिया लेकिन अब बहुत देर हो चुकी कि अब हम नाम लेंगे, सोला माला करेंगे, तो वो चाहे उसमें टेस्ट हो न हो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए तो कोई व्रत नहीं लिया, तो फिर इस संबंध में सबसे बड़े मन में संशय उठता है कि कैसे करें, क्योंकि कभी कभी ये विषय इतना जटिल एक अध्याय दूसरे अध्याय की भांति सेम लगता है, और फिर देखकर लगता है उस चौपाटी मंदिर में जो प्रभुपाद जी के बगल में बुक शेल्फ के सामने जो आपने देखा होगा सारे प्रभुपाद जी के ग्रंथ रखे भाषाओं में एक तरफ और बाकी भागवत सेट वगैरह, तो उसके सामने एक व्यक्ति बहुत देर से खड़े हुए देखे जा रहे तो मैं काफी देर तक उनको देखा, फिर जाके पूछा आप देख क्या रहे हो भैया, तो डिवोटी मुझे बोलते हैं मैं देख रहा हूं कि प्रभुपाद ने इतने बुक्स क्यों लिख दिए, क्योंकि मैं तो पहला स्कंद भागवत भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं और इतने बुक्स लिख दिए, इसको देख के मुझे बड़ा गिल्टी फीलिंग हो रहा है कि इतने ग्रंथों को मैं कब पढ़ पाऊंगा, क्योंकि इस कलयुग में इस विषय वस्तु में ध्यान को आविष्ट करना इतना आसान है। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर किसी को बुक दिखाए तो व्यक्ति अपना सूटकेस लेके भाग रहा था, तो उसने कहा रे भाई बुक तो देख लो, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूं, तो बोला करते क्या हो, बोलो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं दवाई, तो बोला अच्छा कौन सी दवाई, बोले साइकेट्रिक दवाई, तो डिवोटी बोले बुक ले लो नहीं तो तुमको भी लेना पड़ेगा दवाई, क्योंकि जब तक आप अपने मन और बुद्धि को पूर्णतः नियंत्रित नहीं करोगे तब तक जीवन का लक्ष्य क्या है इससे पूरी तरह विमुख हो जाओगे, और अर्क भावनाओं को मन में पालकर व्यक्ति का मन पूरी तरह छिन्न भिन्न होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इस ग्रंथ को सिस्टमैटिक पढ़ो। तो इसलिए सबसे पहले जब हम कोई भी कथा को श्रवण करें तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने में अगर आप अपने अनुभव को बढ़ाना चाहते हो तो ये पांच बातें आवश्यक हैं। सबसे पहला कि जिस कथा में जो पात्र के विषय में चर्चा हो रही है उस स्थिति में अपने आप को स्थापित करो, प्लेस योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, कि अगर मैं इस था तो क्या होता है कि नहीं। अब पांडवों पांच पांडव थे एक द्रौपदी थी, उसी को देख के ये नहीं सोचना चाहिए ऐसा तो होने नहीं वाला अपने साथ, तो छोड़ो ये तो पांडवों का लाइफ ही अपने लिए रेलेवेंट नहीं, उल्टा सोचना है कि भाई अब इनका ये नष्ट हो गया, बोली सारी संपत्ति चले गई, सारा साम्राज्य चला गया, और कोई सोचे अरे मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं तो फिर मेरा क्या साम्राज्य, जब आया ही नहीं तो जाएगा क्या। तो केवल इतना बड़ा राज्य या वो नहीं जिसके प्रति अपना मोह हो आसक्ति हो, कोई भी वस्तु वो जब निकले तो कैसे होनी चाहिए, So you have to place yourself in that situation. अब प्रहलाद महाराज की कथा सुन के ये मत सोचा, अरे मेरे पिताजी तो बड़ा प्रेम करते हैं, तो अपने लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पास टाइम क्या है? समुद्र मंथन, अरे एक लीटर दूध नहीं मिलता बराबर ओरिजिनल, शीर सागर, क्या बात करे यार, आगे बढ़ो। ऐसा करते रहोगे तो वो एक दिन में 12 स्कंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपको लगेगा नहीं कि इसका अपने साथ कोई संबंध है, क्योंकि कलयुग में डायरेक्ट कुछ है ही नहीं, हम लोग का लाइफस्टाइल ही बिल्कुल अलग है। तो चाहे आप कुछ भी पढ़ो, कर्दम मुनि देवहूति, वो तप में चले गए और ऐसा होता है कि साथ में रहे नहीं कुछ नहीं, ये क्या है, चलो ये 7 चैप्टर निकालो आगे भूल जाओ। हाँ ये शिवजी, हाँ दक्ष प्रजापति गाली दिया, ये थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है। तो ऐसा करके चुन चुन के यहां वहां कुछ हम लोग को अध्याय मिलेगा, तो फिर हम उसके तात्पर्य को, मर्म को नहीं पकड़ सकते। सो यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। तो इसलिए है जिससे जब हमारे जीवन में जब विपत्ति आए तो उस विपत्ति के लिए जो प्रतिक्रिया हम करें उसका विश्लेषण इसमें हुआ है। वो प्रतिक्रिया इस भागवत और चैतन्य चरितामृत के दिए गए और शास्त्रों और पात्रों के अनुसार हमें करना है। दूसरा, हम उन कथाओं के जो मेन मीनिंग्स हैं, तात्पर्य हैं, उसको और गहन रूप से समझने का प्रयत्न करें। गो डीपर टू ग्रास्प द फाइनर डिटेल्स। जो स्थूल रूप से समझ गए वो तो समझ गए, लेकिन और सूक्ष्म रूप से उसमें और क्या क्या छिपे हुए दृष्टिकोण है, व्हाट आर द हिडन पर्सपेक्टिव्स इन दिस, इसको भी समझने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि इससे और अधिक हम मनन कर पाते हैं, विचार कर पाते हैं। क्योंकि कभी आपको कोई जो तत्व है वो बिल्कुल सीधा दिखेगा, है ना। सुदामा जी आए कृष्ण के पास, कृष्ण को संतुष्ट किया और फिर वो चले गए। कृष्ण ने उनको उस समय कुछ दिया नहीं, लेकिन बाद में सुदामा जी करोड़पति बन गए। तो इसको सुनकर लगेगा, अरे वाह तो बढ़िया है, हमको भी सुदामा जैसे बनना। लेकिन फिर जब आप गहरे रूप से पढ़ते हो तो आचार्यगण बताते हैं कि नहीं, वास्तव में सुदामा जी के मन में कुछ अभिमान हो गया था, उनको नम्र करने के लिए ये संपत्ति और ये सब कुछ दिया गया। क्योंकि कृष्ण सुदामा को केवल करोड़पति बनाने के मूड में नहीं थे, ये उनका मेन भाव नहीं था, भक्तों के प्रति उनके प्रेम का ये वास्तव में परिचय नहीं, भक्तों के हृदय में जो अभिमान है उसका दमन करना उनका मेन मिशन है। तो ये एक हिडन पर्सपेक्टिव है कि नहीं? तो ये थोड़ा गुप्त है। तो क्यों ये आवश्यक है? जब हम और ऐसे अर्थों को समझते हैं तो कोई भी कथा, कोई भी विषय, हमारे जीवन की भी कोई भी घटना जितना अधिक रोमांचक होती है उतना हमारे स्मरण करने में सहायक बनती है कि नहीं? ड्रामा इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मेमोरी। जितना ड्रामेटिक कुछ होता है उतना अपने मस्तिष्क के बाहर निकलता ही नहीं। कभी भी आप याद करो, आपके भी जीवन के ऐसे पहलू और ऐसे आदान प्रदान आपको याद रहेंगे जब कुछ ड्रामेटिक हुआ, जब कुछ रोमांचक, जब कोई बहुत बड़ा आनंद की घटना घटी या बहुत बड़ा जब सदमा लगा, ये दो बातें अपने को बराबर याद रहती हैं। और बाकी दिन जब हम लोग उठे, आरती किए जप करते हुए, कभी सोए कभी उठे, कभी कथा सुने, ये हुआ वो हुआ, रेगुलर दिन चला गया, वो थोड़ी याद रहता है। कौन से दिन याद रहते हैं? जब कुछ रोमांचक हुआ। तो उसी प्रकार जितना अधिक हम इन कथाओं में रोमांचक बातों को याद करेंगे, उतना हम उन बातों को स्मरण कर पाएंगे। सो देयरफॉर वी हैव टू प्रोब डीपर इनटू दीज पास्ट टाइम्स टू सी द हिडन पर्सपेक्टिव्स। थ्री, तीसरा कि हम इन कथाओं को जब पढ़ें और जब श्रवण करें, इट हैज टू बी इन अ प्रेयरफुल मूड, प्रार्थना के भाव में वो हो, कि हम मननशील होकर प्रार्थना करें कि भगवान इन कथाओं के माध्यम से हमारे समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, उसे प्रकट करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स द लॉर्ड शुड रिवील टू अस, ऐसी हम प्रार्थना करें। फिर चौथा कि ये जितने भी कथाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मूल कारण है कि हम इन कथाओं के आधार पर इन शिक्षाओं को आंतरिक अपने जीवन में उतारें। वी प्रैक्टिस इट। सो देयरफॉर दीस पास्ट टाइम्स हैव प्रैक्टिकल लेसन्स। इन कथाओं के अंदर, इन शिक्षाओं के अंदर कुछ ऐसे वास्तविक जीवन में उतारने लायक शिक्षा हैं। इनमें से जो टिप्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको निकालना है और उसको निकालने के पश्चात उस पर मनन, वी हैव टू डीपली कंटेम्पलेट, और उसके पश्चात मनन करने के बाद हमें विचार करना है, हाउ डू आई अप्लाई दिस इन माई लाइफ, इसे कैसे अपने जीवन में उतारें। और जब हम शाव को अपने जीवन में उतारेंगे, जैसे पृथु महाराज और इंद्र के बीच इतना विवाद हुआ, युद्ध हुआ, कलह हुआ, मतभेद हुआ, बारंबार इंद्र ने आक्रमण करके उस घोड़े को ले गए और दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, पृथु महाराज के क्रोध की पराकाष्ठा हुई और उन आक्रमण करके नष्ट करने वाले थे, तब अचानक उनको ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि ये मत करो, और इस प्रकार उनको निवेदन किया गया। तो फिर उस निवेदन की प्रतिक्रिया उन्होंने क्या की? पृथु महाराज उस बात को स्वीकार कर लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि भाई आपको चयन करना है कि आप कौन सा साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग का साम्राज्य या भगवान श्री कृष्ण के हृदय का साम्राज्य, आप कहां प्रवेश करना चाहते हो, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो या कृष्ण के हृदय में प्रवेश करना चाहते हो, सत्ता चाहते हो या सेवा चाहते हो। तो जब ये हम सुनते हैं, तो फिर जब हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आती है, जब हमारे सामने ये चयन करने का अवसर आए कि हम क्या करें, सहन करें या फिर आक्रमण करें, और तब जब हम सहन कर अपने जीवन में इसको उतारते हैं, तो उसके पश्चात जो अनुभव और साक्षात्कार हमें होता है, इससे सबसे पहले वी गेन अप्रिसिएशन दैट दिस नॉलेज इज रेलेवेंट। तभी हम समझते हैं कि हाँ भाई, इसमें जो दिया गया है, इसमें कोई वैल्यू है, कोई अर्थ है। दूसरा, देन वी अट्रैक्ट द मर्सी एंड ग्रेस फॉर द सिंसियरिटी ऑफ आवर पर्पस, बिकॉज नित्यम भागवत सेवा या भागवत जी भी, भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे हैं कि हाँ भाई, इस ज्ञान के अनुरूप ये अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो इसलिए द प्रैक्टिशनर अट्रैक्ट्स द मर्सी एंड ग्रेस फॉर द सिंसियरिटी ऑफ हिज पर्पस, कि हाँ भाई, इन्होंने प्रामाणिक रूप से इसको अपनाने का प्रयत्न किया है, उसके लिए भगवान आदान प्रदान करते हैं, अंदर से उसका अनुभव हम कर पाएंगे। तीसरा, देन वी फील वेरी टेंजिबली कनेक्टेड विथ कृष्ण एज अ सोर्स ऑफ दैट नॉलेज, तब समझ में आता है कि हाँ भाई ये कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको गोदाम से निकालना है, ये ऐसा ग्रंथ है जिससे कृष्ण, जिसमें कृष्ण साक्षात विद्यमान है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें यह समझना है कि इन ग्रंथों को अपने जीवन में उतारना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वी हैव टू प्लेस आवरसेल्स इन द सिचुएशन, वी हैव टू प्रोब डीपली इनटू दिस मीनिंग्स, वी हैव टू प्रे, वी हैव टू प्रैक्टिस। व्हेन वी डू दिस फोर, ये जब चार हम करें तब फिर पर्याप्त मात्रा में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है जिसके कारण हम प्रचार कर पाते हैं। देन वी गेट एम्पावर्ड टू पब्लिसाइज एंड प्रीच। तो इसलिए प्रचार में सबसे पहले यह आवश्यक है, फर्स्ट स्टेप वन रीड द बुक्स, स्टेप टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज लेसन्स इन दिस लिटरेचर, स्टेप थ्री अप्लाइड, स्टेप फोर एक्सपीरियंस दैट नॉलेज इन द डेप्थ्स ऑफ योर हार्ट एंड कॉन्शियसनेस, उसे अनुभव कीजिए। देन स्टेप फाइव इज यू पब्लिकली डिस्कस दिस विथ अदर्स, और जब हम इसे प्रचार करते हैं, लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत करते हैं, फिर इसी ज्ञान को हम वास्तविक रूप से और गहन रूप से समझ पाते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर इस कृष्ण कथा को समझना इतना आसान नहीं, और इसे समझने के लिए मुझे भी रामानंद राय का आश्रय लेना पड़ा, ऐसा भट्ट जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ओर संकेत करके कहते हैं, दामोदर स्वरूप प्रेम रस मूर्तिमान, जार संगे होइला ब्रज मधुर रस ज्ञान। तो कहते हैं ये है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर स्वरूप प्रेम रस मूर्तिमान, ये प्रेम रस की मूर्तिमत्ता स्वरूप है। इनकी विशेषता क्या है, जार संगे होइला ब्रज मधुर रस ज्ञान। अब देखिए ब्रज के रसों का मुझे आस्वादन इनके माध्यम से हुआ, ब्रज की भक्ति का तत्व का ज्ञान रामानंद राय से हुआ, लेकिन ये रस और भाव क्या है ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी से इनकी जानकारी प्राप्त हुई। इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल मेलोस एंड इज अ टीचर ऑफ वृंदावन्स ट्रांसेंडेंटल मेलोस ऑफ कॉन्जुगल लव। गोपियों का कृष्ण के साथ जो भाव है, तो पहले देखिए रामानंद राय से महाप्रभु कहते मैंने साख्य और वात्सल्य के भावों को समझा, अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को माधुर्य रस के शिक्षक के रूप में प्रकट करते हैं। शुद्ध प्रेम ब्रज देवीर काम गंधहीन, काम कृष्ण सुख तात्पर्य एतार चिन। ब्रज के गोपियों की विशेषता क्या है, शुद्ध प्रेम ब्रज देवीर काम गंधहीन, ये काम वासना के दुर्गंध और दुर्वासना से मुक्त हैं। शुद्ध प्रेम ब्रज देवीर काम गंधहीन, इनके हृदय में कोई भी काम वासना नहीं, और कृष्ण सुख तात्पर्य एतार चिन। कृष्ण सुख तात्पर्य, कृष्ण के सुख को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मानकर वो चल रहे हैं। कृष्ण सुख तात्पर्य ई तार चिन्ह, ये वास्तव में उनका चिन्ह है। नो लस्ट एंड सेटिस्फाई कृष्ण। और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण गोपियों का क्या है, गोपी गणेर शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ज्ञानहीन, प्रेमेर भर्सना कोरे एतार चिन। और गोपी गणों का कृष्ण के प्रति इतना स्नेह स्वाभाविक है कि वो श्री कृष्ण को देखकर अपने शुद्ध प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञानहीन गोपी गणेर गोपी गणों के हृदय में कोई ऐश्वर्य ज्ञान है ही नहीं, प्रेमेते भर्सना करे और प्रेम से उनकी भर्सना करते हैं। पति सुतान वयाद भ्रात्र बांधवाद अति विलंगते गति विदस्तव कीट मोहिताद कितव योषित कस्त्यजित निशी। अरे हमने इतना सब अपने पति भाई बंधु इत्यादि सबको सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करने हम कितने बार आपके पास आए हैं, लेकिन आप हमारे साथ आदान प्रदान नहीं करते। आप तो एक कितव हो अर्थात चीटर हो, आप पाखंडी हो, इस प्रकार वो भर्सना करते हैं श्री कृष्ण के। सर्वोत्तम भजन ए सर्व भक्ति जिनी अत एव कृष्ण कहे आमी तोमार ऋणी। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के इस भक्ति को देखकर कि उन्होंने श्री कृष्ण करने के लिए अपने हर प्रकार के पारिवारिक संबंधों को सामाजिक संबंधों को दांव पे लगा दिया, हर प्रकार के सामाजिक आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा सर्वोत्तम भजन ए सबसे सर्वोत्तम भजन आपका है और सर्व भक्ति जिनी और आपने अपने भक्ति से हमें जीत लिया है और आपके इस भक्ति के सामने अत एव कृष्ण कहे आमी तोमार ऋणी। आपके इस प्रेम के सामने मैं ऋणी हो गया, आपने मुझे अपने प्रेम से इस प्रकार खरीद लिया कि उसके बदले में मुझे देने के लिए कोई मूल्य नहीं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न पारये हम निरवज्ज संयुजाम स्वसाधु कृत्याम विबुधायुषापिव। कि देखिए आप अपने ही प्रेम से सुखी रहिए, स्वसाधु कृत्याम आपने जिस प्रकार मुझसे प्रेम किया है, विबुधायुषापिव ब्रह्मा जी के भी जीवन काल के लिए अगर मैं धन बटोरते बटोरते अगर सारी लक्ष्मियों से भी कहूं कि भाई अपने सारा धन मुझे दो, फिर भी मैं आपके इस ऋण को नहीं चुका सकता। या मा भजन दुर्जय गेह श्रृंखलाम संवृच्य संवृच्यत प्रतिया तु साधुन। कि देखिए या मा भजन दुर्जय बड़ा कठिन है, इस भौतिक जगत के अपने पूर्व काल के समस्त आसक्तियों का परित्याग करना, उन जंजीरों और श्रृंखलाओं को काटना तोड़ना, उस मोह से छूटना। भगवान अपने मुख से कहते हैं दुर्जय, उस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। गेह श्रृंखलाम ये श्रृंखला है, ये लोहे की जंजीर है जिसके ऊपर बड़ा लोहे का ताला लगा हुआ है, इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं। संब्रज तद्व प्रतियात साधुना। इसलिए आप ऐसा अभूतपूर्व त्याग और अनासक्ति वैराग्य का प्रदर्शन कर पाए जो बड़े बड़े वैरागी भी समय के साथ परिश्रम करने पर भी नहीं कर पाते और अपने प्रयत्न में थक जाते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को इन गोपियों के भाव के पारंगत विद्वान के रूप में स्थापित करके, जो महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में आए हैं, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति की आधारशिला है कि मैं हर क्षण अन्य दूसरे किसी भक्त से भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी वैष्णव भक्तों के वैशिष्ट्य गुणों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो। तेहो चार पद धूली कोरे न प्रार्थन स्वरूपे रसंग पायलू सब शिक्षण। तो कहते हैं कि उद्धव जी भी आए थे और उद्धव जी भी ब्रज के ब्रज गोपियों के इस भाव को देखकर उनके सामने झुक गए। आसाम अहो चरण रेणु अहम जुषम श्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लतौषधीनाम। उद्धव जी कहते हैं वृंदावनम, वृंदावन में आकर किमपि गुल्म लतौषधीनाम, मैं केवल लता और औषधि बनकर मैं निरंतर इन गोपियों का स्मरण करना चाहता हूं। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य हितम पथम चहित्वा, फिर वही बात करते हैं, या दुस्त्यजम, जिस मार्ग को त्यागना बड़ा कठिन है, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पहित्वा, अर्थात सामाजिक स्वीकृति बद्ध जीव के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसी सामाजिक स्वीकृति के सनातन काल से चलते हुए उस भाव को तिलांजलि देकर भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के एकमेव भाव को सर्वोच्च मन में धारण करना कितना कठिन है। भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर विमृगाम। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को वेद इत्यादि अनादि काल से ढूंढते रहे हैं और गोपियों ने श्री कृष्ण के उन चरण कमलों को प्राप्त कर लिया और अब मैं केवल उन गोपियों के चरण कमलों को अपने मस्तक पर किस तरह विभूषित करूं, उनके चरणों के रज से अपने संपूर्ण देह का अभिषेक कैसे कराऊं, इसके विषय में विचार कर रहा हूं। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सख शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। तो भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को संकेत करते हैं कि आप जाइए वृंदावन में जाइए, मथुरा से कहते हैं आप जाओ उनको सांत्वना देने, तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन में क्यों भेजा, इसके पीछे आचार्यगण लगभग 15 से 17 कारण देते हैं। सबसे पहले कहते हैं, हां खैर उद्धव को क्यों चयन किया ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले वो 3 कारण कहते हैं कि भाई कृष्ण को किसी व्यक्ति को वृंदावन में भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब ब्रज छोड़ के आ गए थे, मथुरा में आ गए थे, तो फिर भी श्री कृष्ण ने क्यों भेजा किसी को। सबसे पहले क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपना शब्द दिया था, ही हैड प्रॉमिस्ड द ब्रजवासीज। जब वो निकल रहे थे और सारी गोपियां कृष्ण के विरह में एवं बुर्वाणा विरहातुरा वृषम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानस विसृज लज्जा रुदुस्मसुस्मरम गोविंद दामोदर माधवेति। अक्रूर जी के उस रथ को जाते हुए देखकर जब गोपियां आर्तनाद कर रही थी तो उसको देखकर श्री कृष्ण उन सभी को सांत्वना दे रहे थे। तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदोत्तम सांत्वयान आसस प्रेमै आयास्ये इति दौत्यकैः। तो अपने उन गोपी गणों के उस विरह भाव को देखकर तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य, देखकर कि कैसी गोपियां तड़प रही हैं, जैसे बिन जल के मत्स्य कैसी तड़पती है वैसी गोपियां, उनके ताप को देखकर तास तथा तप्यतीर वीक्ष्य स्वप्रस्थान यदोत्तम। और यादव कुल के कुल तिलक भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे उस समय उनका हृदय द्रवित हो रहा था इस दृश्य को देखकर कि कोटि कोटि गोपियां उस रथ के चारों तरफ भ्रमित होकर अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए हर प्रकार के सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति तिलांजलि इत्यादि को पूरी तरह भंग करके वहां पर गिर रही थीं, रो रही थीं और केवल कृष्ण से निवेदन कर रही थीं, आप मत जाइए। सांत्वयाम आसस प्रेमय, बड़े प्रेम भरे शब्दों से श्री कृष्ण जो देख रहे थे कि इस प्रकार का प्रेम उनको कहीं प्राप्त नहीं होगा, ऐसे प्रेम के बंधन से जो ब्रजवासी कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे प्रेम की गुणवत्ता उन्हें और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान ने विचार किया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अन्य भी कई कर्तव्य हमें पूर्ण करने हैं, इसलिए इन्हें अब हम सांत्वना देते हैं। आयास्ये इति दौत्य कहि, और उनको कहा आयास्ये इति। तो श्री कृष्ण ब्रज से जाते हुए सबसे महत्वपूर्ण दो शब्द उन्होंने कहे वो ये थे, आयास्ये इति दौत्य कहि, मैं अवश्य लौट के यहां आऊंगा। आयास्य अर्थात आऊंगा, कमिंग, बस इतना बोलकर वो निकल गए। और श्री कृष्ण के ऊपर इतनी श्रद्धा थी, श्री कृष्ण के शब्दों पर गोपियों की ब्रजवासियों की इतनी श्रद्धा थी कि अरे श्री कृष्ण ने कोई शब्द कहे वो शास्त्र है, और शास्त्र से कोई शब्द प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो सामान्य नहीं, उनकी असामान्य महिमा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शब्द अगर ग्रंथों से प्रकट हो, किसी वैष्णव भक्तों के मुख से प्रकट हो, या साक्षात श्री कृष्ण से प्रकट हो, तीनों में एक ही प्रकार का सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए कृष्ण ने कहा आयास्य, मैं लौट के आऊंगा, अर्थात वो सत्य सिद्ध होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने क्योंकि इस प्रकार प्रॉमिस दिया था, वचन दिया था, इसलिए उनको दूत को भेजना अनिवार्य था कि मैं आ रहा हूं, कुछ और प्रतीक्षा करो। दूसरा, न केवल ब्रजवासियों को उन्होंने यह संबोधित किया था, जब मथुरा में चाणूर और मुष्टिक का वध हो गया, कंस का वध होने के पश्चात कुछ समय वसुदेव और देवकी के साथ एकांत में समय बिताने के बाद कृष्ण और बलराम नंद महाराज के पास आकर उनको कहते हैं, जातयोयम ब्रजम तात वयम तु स्नेह दुखीतान ज्ञातीन वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदान सुखम। नंद महाराज के पास आकर कृष्ण और बलराम बड़े प्रेम से कहते हैं, और कृष्ण मुख्य रूप से कहते हैं, यात यूयम ब्रजम तात, अरे पिताजी अब आप सभी लोग ब्रज में चले जाइए। और नंद महाराज कहते हैं, और तुम, आप हमारे साथ नहीं आने वाले? तो बलराम जी तो पता है कि भाई हाँ वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? तो कहते हैं, वयम च स्नेह दुखितान, वसुदेव जी और देवकी जी बहुत समय से बलराम जी से नहीं मिले, और बाकी सभी इनसे मिलना चाहते हैं, और मुझसे भी निवेदन कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा इनके दुख को दूर करें, इन सभी की पीड़ा को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, ऐसा करते हैं कि कुछ समय हम रह जाएंगे इनके साथ, इनके दुख को दूर करने। किनके दुख को? ज्ञातिम वो द्रष्टुमेष्यामो, रिश्तेदार संबंधी, ज्ञातिम वो द्रष्टुमेष्यामो, जो इच्छा कर रहे हैं कि वो कुछ समय और हमारा दर्शन यहां करना चाह रहे हैं। विधाय सुहृदां सुखम, और दूसरे जो हमारे सुहृद हैं, इन सभी को भी हम थोड़ा सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी कंस का वध हुआ है, और हो सकता है मथुरा पर कंस के बाकी जितने साथी असुर हैं, उनका आक्रमण हो जाए, इनके मन में कुछ भय है, आतुरता है, तो मैं इनको कुछ सुख देने के लिए, इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए रुक जाता हूं। आप आगे बढ़िए नंद महाराज जी, और सभी ब्रजवासी हम आ ही जाएंगे। ऐसा कृष्ण ने नंद महाराज को सांत्वना देकर नंद महाराज को भेज दिया। और उस समय जब नंद महाराज कृष्ण का आलिंगन कर नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाते हुए जब ब्रज की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वो दृश्य अनिर्वचनीय है, क्योंकि नंद महाराज के मन में ये भय था कि कृष्ण कभी लौट कर नहीं आएंगे। तीसरा, वसुदेव और देवकी को भी श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया था, और कृष्ण कहते हैं, न लब्धो दैवहतयो वासो नो भवदन्ति के यम बालाः पितृ गेहस्थाः विन्दते ललिता मुदाम। जब कंस का वध हुआ, वसुदेव और देवकी को जैसे ही कृष्ण मिलते हैं, उसके पश्चात राजमहल के अंतर्गत, तो उनको आलिंगन करने के पश्चात कृष्ण और बलराम उनको कहते हैं, न लब्धो दैव हतयो दैववश, आप लोगों का संग लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, दैव हतयो, दैव ने हमारे संग को तोड़ डाला, नष्ट किया। वासो नौ भवदन्ति के, और आप सभी के साथ हम वास नहीं कर पाए, भवद अंति के, आपके निकट हम नहीं रह सके। याम बाला पित्र गेहस्थम, हर माता पिता के हृदय में यह स्वाभाविक अनुराग होता है कि हमारे छोटे नन्हे से शिशु, विशेष रूप से एक से लेकर 5-7 वर्ष की आयु में जब बढ़ रहे हो, विंदते लालिता मुदाम, सबसे अधिक आनंद की अनुभूति उन वर्षों में होती है। विंदते लालिता, ऐसे पूर्णतः माता पिता पर आश्रित, उनके संरक्षण, उनके भरण पोषण पर आश्रित, ऐसे नन्हे से बढ़ते हुए शिशुओं को आप अपने निकट नहीं देख पाए। विंदते लालिता मुदाम, ऐसे लालन पोषण का जो मुदा, जो सुख है, उससे आप लोग वंचित रह गए। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अब हम आपके पास रहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि भाई कृष्ण नंद महाराज और यशोदा माई और कुछ ब्रजवासियों को लेकर मथुरा ही आ जाते, वसुदेव और देवकी के लिए कोई प्रॉब्लम था क्या एक आध गेस्ट रूम देना? गेस्ट रूम का एक पूरा महल दे देते, एक महल में नंद महाराज वसुदेव और यशोदा माई रह जाते, क्या प्रॉब्लम? हम लोग तो वृंदावन से मथुरा जाकर 2-2, 3-3 घंटे में अप डाउन करते। तो आचार्यगण बताते हैं कि यशोदा माई और नंद महाराज के साथ कृष्ण का जो आदान प्रदान का रस था, वो वसुदेव और देवकी के साथ वैसा नहीं, वो अलग था। इसलिए वसुदेव और देवकी के सान्निध्य में रहते हुए नंद और यशोदा माई को भी वहां लाना उचित नहीं होता, रसाभास हो जाता। तो इसलिए श्री कृष्ण ने उनको वहीं रखा, और नंद महाराज और वसुदेव और नंद महाराज और यशोदा माई भी इस बात को जानते थे। तो इसलिए यहां पर कृष्ण विचार कर रहे थे कि किसी दूत को भेजना है, सांत्वना देने, संदेश देने भेजना है, अन्यथा संपूर्ण ब्रज में हाहाकार मच जाएगा, हो सकता है ब्रजवासियों की केवल लाशें मिली। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, तो वृष्णियों के प्रमुख मंत्री हमारे हैं, कृष्णस्य दैता सख, और ये मेरे हृदय को समझते हैं, जानते हैं, सबसे निकट के सखा कौन है? उद्धव और शिष्यो बृहस्पते साक्षात, बृहस्पति के शिष्य भी हैं। और उद्धवो बुद्धि सत्तम, बड़े बुद्धिमान उद्धव जी हैं। तो पहला कारण था कृष्ण ने क्यों चुना, इंटेलिजेंस, बुद्धिमान थे। बुद्धिमान किस लिए, एक्सपर्ट इन पैसिफाइंग ब्रजवासी। सेवा बड़ी जटिल थी ब्रजवासियों का, श्री कृष्ण से दीर्घकालीन अनिश्चित काल के लिए जो अनुपस्थिति थी उसके विषय में उनको संबोधन करना और उन्हें शांत करना। तो सबसे पहला उनका गुण था इंटेलिजेंस, बुद्धि। दूसरा गुण था कृष्ण ऐसे प्रचारक को ढूंढ रहे थे जो वास्तव में ब्रजवासियों के उस प्रेम को देखकर वृष्णियों के समक्ष मथुरा में आके उस ब्रज के प्रेम का प्रचार कर सके, है कि नहीं। तो ये उनके ब्रज गोपियों के प्रेम को प्रचार करने के लिए उद्धव जी श्रेष्ठ थे। तीसरा, ब्रजवासी और विशेष रूप से गोपियां इतनी पीड़ा में थीं कि उनके उस पीड़ा को दूर करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कृष्ण के समान दिखे। तो इसलिए उद्धव जी अपने रूप में, गुणों में, आयु में कृष्ण की भांति ही दिखते थे। He had resemblance of Krishna. तो उसको देखकर ही कृष्ण से जो पीड़ा थी वो कम हो गई। चौथा, रिलेशनशिप, कृष्ण के साथ उनका वो कृष्ण के कजिन थे, भाई थे। वसुदेव जी के भाई का नाम था देवभाग और उद्धवो देवभागस्य महाभाग सुतो भवत, उनके पुत्र थे, देवभाग के पुत्र थे। पांचवें, उद्धव वॉज केपेबल ऑफ कंसोलिंग, उनके अंदर सामर्थ्य था ब्रजवासियों के, विशेष रूप से गोपियां कुछ भी तर्क रखती उस तर्क का विरोध करने और वास्तविक तत्व को प्रस्तुत करने की क्षमता थी। छठा, ब्रज के उस श्रेष्ठ उत्कृष्ट भाव को स्वीकार कर अनुभव करने की क्षमता उनके अंदर थी, अर्थात ही वॉज एलिजिबल, सुयोग्य थे। ही वॉज एलिजिबल टू एक्सपीरियंस द ब्रज भाव, द लव ऑफ द ब्रजवासीज। सेवेंथ, ही वॉज क्रेडिबल, अर्थात मथुरा में सभी लोग उद्धव जी को सम्मान करते थे और सम्मान के साथ साथ उनके शब्दों में विश्वास भी उनका था। और इसी कारण जब वो मथुरा में आकर ब्रजवासियों के श्रेष्ठ प्रेम का वर्णन करते कि भाई इस जगत में ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रेम आप मथुरा वासियों से भी श्रेष्ठ है, तो मथुरा वासी ये नहीं बोल सकते हैं क्या बात करते हो, ऐसा हो सकता है क्या, वसुदेव और देवकी के ऊपर भी कोई हो सकता है, कैसे, तो माता पिता है भाई, तो नहीं। अगर उद्धव बोलते तो उनकी बातों में विश्वास होता था। आठवां, कृष्ण एक ऐसे निपुण काउंसिलर को ढूंढ रहे थे, मंत्री प्रवरो, जो ब्रजवासियों को शांत कर सके। नवा, वो कृष्ण के बड़े प्रिय थे, डियर टू कृष्णा, और इसीलिए क्योंकि वो कृष्ण के इतने प्रिय थे इसलिए ब्रज में जाकर ब्रज के उस भाव को स्वयं अनुभव करने की शक्ति रखते थे। He was suitable to experience the happiness of Braj Prema. फिर दसवां, वो कृष्ण के सखा थे, friend. और क्योंकि वो मित्र थे, सखा थे, what was in the heart would manifest in his words. अर्थात कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर रहे थे, कृष्ण का हृदय और उनका हृदय अभिन्न था, इसलिए वो अपने कृष्ण के हृदय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते थे। उनके सोचने की आवश्यकता नहीं थी, स्वाभाविक रूप से भाव प्रकट होता। और ग्यारहवां, वो बृहस्पति के बड़े बुद्धिमान शिष्य थे जिन्हें डायरेक्ट बृहस्पति ने सिखाया था। तो इसलिए शिक्षो बृहस्पति साक्षात, ऐसा नहीं कि बृहस्पति के किसी शिष्य के माध्यम से वो सीखे थे, बृहस्पति के भी हजारों शिष्य थे लेकिन ये डायरेक्ट बृहस्पति से सीखे थे। और इसलिए बृहस्पति जी ने भी उनको हर प्रकार के शास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन बृहस्पति के पास एक शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो क्या, ब्रज के प्रेम का शास्त्र उनका। तत्पश्चात बारवां, वो सबसे सौभाग्यशाली थे, ही वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट, महाभागा। क्यों? क्योंकि कृष्ण की साक्षात कृपा उनको प्राप्त हुई थी। तेरवां, उद्धव जी सुख के आनंद के मूर्तिमान स्वरूप थे, ही वॉज जॉय परसोनिफाइड, ही वॉज जॉय इनकार्नेट। उद्धव शब्द का एक और अर्थ है साक्षात मूर्तिमान सुख या आनंद, चलते फिरते आनंद के स्वरूप अर्थात उद्धव। तो अगर ब्रजवासी और गोपियों के पीड़ा और क्लेश को दूर करना हो तो चलते फिरते सुख के संपर्क में आकर वो सुखी हो जाएंगे। चौदवा, उनकी महिमा, his greatness was beyond compare. 15th, he was skillful in reasoning. His 16th, his qualities were indescribable. 17th, he was the master of माया, अर्थात वो योग माया और भगवान के उस प्रेम भाव को पूरी तरह स्वीकार कर लिए थे। और 18वां, भविष्य में चलकर सबसे अधिक समय तक बद्री काश्रम में रहकर इस ब्रज के प्रेम का प्रचार करने के लिए भी यह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे अधिक समय ये रहने वाले तो लंबे समय तक ब्रज के प्रेम का प्रचार चलता रहेगा। तो इस प्रकार इन सभी बातों को मन में ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को, उद्धव जी को चयन किया कि ये जाएंगे। वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दैत सख शिष्यो बृहस्पति साक्षात ओ बुद्धि सत्तम। अर्थात एक निर्णय के पीछे श्री कृष्ण ने कितना मनन किया, कितना विचार किया, क्योंकि सभी सिद्धांतों की तुलना में इस ब्रज के भक्ति का सिद्धांत सबसे गहन और सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत था। इसको प्रकट करना आसान नहीं और केवल उद्धव इस बात को समझ सके, इसलिए महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को संकेत करके कहते हैं, जैसे कृष्ण ने उद्धव को भेजा क्योंकि केवल वो उद्धव ही उस ब्रज गोपियों के भाव को समझ सकते थे, हमारे इस संघ में एक ही व्यक्ति है जो ब्रज गोपियों के भाव को समझ सकते हैं, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इंद्र में कुछ इस बात को सुन सका। दामोदर स्वरूप प्रेम रस मूर्तिमान जार होइला ब्रज रस ज्ञान, कि ऐसे दामोदर स्वरूप के जो वास्तव में प्रेम रस मूर्तिमान हैं, उनका संग प्राप्त करके जार संगे होइला ब्रजेर रस ज्ञान, इस रस ज्ञान को मैं समझ सका। फिर महाप्रभु ठाकुर हरिदास की ओर संकेत करके कहते हैं कि अरे भट्ट जी, ये नाम जो सब जगह आप सुन रहे हो उस नाम की महिमा के विषय में भी जो जानकारी हुई, हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान प्रतिदिन लयते हो इन लक्ष नाम। प्रतिदिन 3 लाख नाम लेने वाले हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान, भागवत ये हैं, 3 लाख नाम लेते हैं। नामेर महिमा आमी तार शिखलू तार प्रसादे नामेर महिमा जानी लू। अब नाम की महिमा अगर मैंने जानकारी प्राप्त की, तार प्रसादे नामेर महिमा, नाम की महिमा को इनकी कृपा से जान पाया, इसीलिए नामेर महिमा आमी तार ठाई शिखिलू, उनके सामने जाकर उनके चरणों में बैठकर मैं समझ पाया। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम का प्रचार प्रकट हुए, अवतरित हुए, क्या कह रहे हैं, हरिदास ठाकुर के सामने उनकी महिमा गान कर रहे हैं। और तत्पश्चात अब तक वल्लभ भट्ट जी का मन भ्रमित होने लगा, सोचने लगे कितने शक्तिशाली इनके अनुयायी यहां आसपास हैं, और ऐसा सोच ही रहे थे तब महाप्रभु और सभी भक्तों की ओर बोले कि भाई जैसे मैंने विस्तृत रूप से एक एक भक्त के वैशिष्ट का वर्णन किया, वैसे यहां सैकड़ों भक्त हैं। आचार्य रत्न आचार्य निधि पंडित गदाधर जगदानंद दामोदर शंकर बक्रेश्वर, आचार्य रत्न आचार्य निधि गदाधर पंडित जगदानंद दामोदर शंकर पंडित वक्रेश्वर पंडित काशीश्वर मुकुंद वासुदेव मुरारी आरजत भक्त गण गौड़े अबतरी, ऐसे कई कई भक्त बंगाल से यहां प्रकट हुए हैं, कई तो बंगाल से आए भी नहीं, वहीं पर हैं। इसलिए कृष्ण नाम प्रेम कोयला जगते प्रचार इहार सबार संगे कृष्ण भक्ति जे अमार। कृष्ण नाम प्रेम कोयला जगते प्रचार, इन सभी लोगों ने मिलकर कृष्ण नाम और प्रेम को जगत में प्रसिद्ध किया है। इहा सबार संगे कृष्ण भक्ति जे अमार, इन लोगों के संग में मैं भी बूंद बूंद कर कुछ भक्ति अपने हृदय में बटोर रहा हूं। इहा सबार संगे, ऐसे महान वैष्णवों के संग में एक एक बूंद करके मैं बटोर पा रहा हूं। कृष्ण भक्ति जे अमार, तब जाकर मैं कुछ कृष्ण भक्ति क्या है समझ पा रहा हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतने उत्कृष्ट रूप से इन सभी भक्त वल्लभ भट्ट के सामने स्तुति की कि वल्लभ भट्ट अब विचार करने लगे, क्या भट्टेरा हृदय दृढ़ अभिमान जानी भोंगी कोरी महाप्रभु कहानी। तो महाप्रभु ने ये इतना सब क्यों कहा, क्योंकि महाप्रभु भट्टेरा हृदय दृढ़ अभिमान जानी, भट्ट के हृदय में अभिमान को देख सके, उनके मन में अभिमान था, और इसीलिए भंग करी महाप्रभु कहे एत बाणी, इस अभिमान को भंग करने के लिए महाप्रभु ने ऐसा कहा। तो इसीलिए ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज चैलेंजेस द ईगोज ग्रेटिफिकेशन, डिवोटीज ग्लोरिफिकेशन चैलेंजेस ईगोज ग्रेटिफिकेशन। जो मिथ्या अभिमान को लगता है कि हम कितने महान हैं, क्या श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे अभिमान से और ऐसे दंभ से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है। कृत्रिम रूप से हम मैं नम्र बनूंगा आशीर्वाद दो बोल के कुछ नहीं होगा। जितने अधिक शक्तिशाली वन हैज टू बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई मैं इन सब गुणों को इन सभी से सीखा हूं। तीसरा, वन हैज टू फेथफुली सर्व, प्रामाणिक रूप से हमें सेवा करने का प्रयत्न करना है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, दूसरा कोई उपाय नहीं। चौथा, वन हैज टू एक्सेप्ट द वैष्णवास एज गुरुज एंड आस्क द क्वेश्चंस, लर्न व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस फ्रॉम देम। वैष्णवों को गुरु मानकर, उन्हें अपना शिक्षा गुरु मानकर भक्ति क्या है उनसे सीखें। तो ये चार बातें महाप्रभु इस लीला से प्रदर्शित कर रहे हैं। नंबर वन, एक्सेप्ट द वैष्णवास सुप्रीमेसी, एक्सेप्ट स्वीकार करो, चाहे मन कुछ भी क्यों ना कहे, स्वीकार करो, एक्सेप्ट। ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट, नंबर टू, यू कैन सर्व, आप सेवा कर सकते हो। विदाउट एक्सेप्टिंग यू कैन नॉट सर्व। तो स्वीकार जब तक नहीं करेंगे वैष्णवों की महिमा को, तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। एंड इफ वी कैन नॉट सर्व, वी कैन नॉट लर्न, हम ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते भक्ति के विषय में। तो महाप्रभु ने तीन सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के लिए आधारशिला तत्व इसमें व्यक्त किया। एक्सेप्ट द वैष्णवास, सर्व द वैष्णवास एंड लर्न फ्रॉम द वैष्णवास। ये सभी वैष्णवों के चक्रव्यूह में ही आपको इस ज्ञान को स्वीकार करना है। सो द कंक्लूजन इज, वन शुड नॉट प्राउडली थिंक that one can understand the transcendental loving service of the Lord simply by reading books. तो प्रभुपाद जी यहां परपोर्ट में लिखते हैं, one should not proudly think that one can understand the transcendental loving service by reading books. ये मन में अभिमान नहीं होना चाहिए कि केवल हम कुछ शास्त्र पढ़ के, बुद्धि का प्रयोग करके हम भक्ति क्या है इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए अब श्री चैतन्य महाप्रभु भट्ट जी के मन के इस अभिमान को समझकर ये वार्तालाप किए। तो इसलिए अब अंतिम दो श्लोक में भट्ट जी के मन में वो अभिमान क्या था, उस अभिमान के तीन पहलुओं का वर्णन अंत में। व्हाट वर द थ्री एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल्स प्राइड। किसी बुद्धिजीवी का अभिमान रूपी पशु कैसे भौंकता है और उसकी ध्वनि क्या होती है। आमी से वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, आमी से भागवत अर्थ उत्तम बाखानी। तो सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति को लगता है आमी से वैष्णव, माय इन्फ्लुएंस इज ग्रेट, अर्थात मेरी जो शक्ति है वो अद्वितीय है। सबसे पहले उसे लगता है, नहीं सॉरी, माय पोजीशन इज ग्रेट, अमी से वैष्णव, हम कितने बड़े वैष्णव है, आई एम सच अ ग्रेट वैष्णव। सो देयर प्राइड अबाउट वन्स पोजीशन, कि हमारे ऐसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, इसलिए हमारी जो स्थिति है, हमारा पद कितना श्रेष्ठ है। आमिसे वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी। दूसरा, माय नॉलेज इज ग्रेट। भक्ति सिद्धांत सब जानी, हम तो सब भक्ति से जान गए, सारे भक्ति सिद्धांत सब हमारे हृदय में कब के प्रविष्ट हो चुके, केवल उसे सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे। अमिसे वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, माय पोजीशन इज ग्रेट, माय नॉलेज इज ग्रेट, मेरा पद श्रेष्ठ है, मैं सबसे एक थोड़ा ऊंचे पद पर हूं, मेरा ज्ञान भी श्रेष्ठ है, सबसे सब लोगों की तुलना में ज्ञान भी मैंने अधिक प्राप्त किया है। और तीसरा संपूर्ण, आमे से भागवत अर्थ उत्तम बखानी। और हम जैसे भागवत के विषय में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, कथा कर सकते हैं, लोगों के सामने ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं, उत्तम बखानी, ऐसा उम्दा कथा कौन करेगा। न भूतो न भविष्यति, यही है कि लोगों को जानकारी नहीं। ओम अज्ञानति मिरंधस्य, ज्ञानांजन चला गया, भगवान उनके उस करें को भी जाने। तो थर्ड इज, माय इन्फ्लुएंस इज ग्रेट, अर्थात मेरा जैसा प्रभाव दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये एक श्लोक के अंदर हमारे बुद्धि से प्रेरित जो अहंकार की क्या लक्षण है, उसकी भूख क्या है, उसकी मांग क्या है, इतना स्पष्ट बता दिया। अमिसे वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, अमिसे भागवत अर्थ उत्तम बखानी। तो इसलिए किसी व्यक्ति को अगर लगे कि मेरा पद श्रेष्ठ है, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, मेरा ज्ञान को प्रदर्शित करने की शैली सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसे अभिमान के अंतर्गत वो व्यक्ति वैष्णवों के सामने जाकर भिक्षुक बन के उनसे ज्ञान नहीं ले सकता, उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, उनके गुणों को नहीं देख सकता, उनके दोषों को देखेगा, दोषों को देखेगा तो उनकी सेवा नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा, और जब शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तो फिर भक्ति में रस नहीं है, भक्ति में रस नहीं आएगा तो विषयाविष्ट मन विषय भोग की तरफ आकर्षित होगा, और फिर वैष्णवों के संग में वो रहेगा, वैष्णवों के हृदय के साथ उसका संग टूट जाएगा, केवल शरीर वैष्णवों के बीच रहेगा लेकिन मन वैष्णव सिद्धांत से कट जाएगा। और इसीलिए यहां पर महाप्रभु भट्ट के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसका परिणाम क्या रहा।
भट्टेरे मनेर एछिला दीर्घ गर्व प्रभुर वचन सुनी से होइला खर्व। भट्टेरे मने थे, भट्ट के मन में एछिला दीर्घ गर्व, ये गर्व एकाद दो दिन में नहीं था, लंबे समय के लिए था कि मेरा पद श्रेष्ठ, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, मेरे ज्ञान को प्रकट करने की शैली श्रेष्ठ है। छीला दीर्घ गर्व, लंबे समय तक था, और इतने लंबे दीर्घकालिक गर्व को शमन करने के लिए प्रभुर वचन सुनी से होइला। जब महाप्रभु से उन्होंने क्या सुना कि मैं कोई अकेला व्यक्ति भक्ति को नहीं प्राप्त किया हूं, अद्वैत आचार्य से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ठाकुर हरिदास से प्राप्त किया है, नित्यानंद प्रभु से प्राप्त किया है, रामानंद राय से प्राप्त किया है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी से मैंने प्राप्त किया है, सार्वभौम भट्टाचार्य से मैंने प्राप्त किया है, तो अर्थात महाप्रभु इन लोगों को अपने से श्रेष्ठ प्रकाशित करके भक्ति के सबसे प्रमुख सिद्धांत को ध्वनित किए। हर क्षण हम दूसरे वैष्णवों की श्रेष्ठता में जब आनंद लेना आरंभ करें, तब वैष्णव सिद्धांत के राजमहल में हमें प्रवेश प्राप्त होता है। और जब तक वैष्णव स्पर्धात्मक रूप से अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के विचार में निरंतर योजना बनाते रहेंगे, तब तक मन एक मंतोष के अकाल पीड़ित भूमि की तरह टूट फूट जाता है। इसलिए ऐसे असंतोष से मुक्त होने के लिए वैष्णव गुणानुवाद का जब मूसलाधार वर्षा हमारी है, तब जाकर हमारे हृदय में भक्ति लता बीज प्रकट होती है। सो द टू वेज इन विच ई डाउन इज when there is presence of excellence, presence amongst Vaishnavas, and number two, there has to be propagation of that excellence. If presence of excellence and propagation of excellence, it makes us anxious, insecure, threatened, hopeless, discouraged, or angry, then that means envy and pride. अगर किसी वैष्णवों की गुणवत्ता को देखकर, वैष्णवों के उत्कर्ष को देखकर, उनके सेवा के उत्कर्ष, गुणों के उत्कर्ष इत्यादि को देखकर अगर मन में विषाद और असुरक्षा इत्यादि की भावनाएं प्रकट हों, तो इसका अर्थ यह है भी द्वेष और अभिमान जुड़वा भाइयों की तरह तांडव कर रहे हैं, और इसलिए उनसे हमें बचने का प्रयत्न करना है। तो इसलिए यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट जी के साथ आदान प्रदान करते समय बड़ा ये सुंदर आदान प्रदान प्रकट किए, जिससे हम लोग समझ सकें कि हमें अपने जीवन में इन बातों को उतारपूर्ण है। एक हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे थे किताब वितरण करते हुए, तब सामने से लंबे लंबे लोग आए, लंबे लंबे बाल थे उनके, बड़े स्मार्ट लग रहे थे। तो डिवोटी उनको देखकर बोलता है, आज मैं सबसे किताब बांटने के लिए आया हूं। तो तुरंत वो लोग सामने रुक गए, मुस्कुराए, बोले क्या है? बोले हम लोग का बुक है, आध्यात्मिक ज्ञान है इसके अंदर, पढ़िए आप। तो लोग दोनों उनको देख के बोले, अरे देखा है हमारे लंबे बाल, ये क्या है पता है क्या? बोले नहीं, हिप्पी हो गया? बोले नहीं, हम लोग जीसस क्राइस्ट की तरह स्टाइल बनाए हैं, समझ रहे हैं? तो डिवोटी जो किताब बेच रहा था उसने कहा, जीसस क्राइस्ट की तरह दिखना पर्याप्त नहीं है, जीसस क्राइस्ट की तरह जीवन भी उतारना है। वो दोनों झटका खाए, कहना क्या चाहते हो? तो कहते देखो, तुम लोग केवल हेयर स्टाइल बनाए हो जीसस क्राइस्ट की तरह, लेकिन हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो जीसस क्राइस्ट की तरह जीवन मैं जी रहा हूं। तो वो लोग बोले, क्या बात कर रहे हो? बोले हां, चार नियम के बारे में बताया, किस तरह लोगों के साथ करुणा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये सब बताया, डिटेल में बताया। फिर बोले, केवल हम लोग का हेयर स्टाइल अलग है जीसस क्राइस्ट, बाकी हम लोग की जीवन शैली वैसी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो लोग इंप्रेस हो गए, किताब ले लिया। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा सबसे बड़ा प्रचार हम लोग का कैसे होगा, जब लोग देखेंगे कि हाँ ये लोग जो केवल ग्रंथ नहीं दे रहे, इसे अपना रहे हैं अपने जीवन में। और इसलिए जब रशिया में सत्य घटना घटी, एक भक्त जो दादाजी थे वो रशियन मिलिट्री में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और मिसाइल शिप में वो कैप्टन थे। तो वो रिटायर रिटायर होने के बाद जब उनका पोता डिवोटी बन गया तो उनसे वो सुनने लगा कि भाई प्रभुपाद जी कौन है, क्या है, इस्कॉन क्या है, गीता क्या है। अजीब लग रहा था लेकिन प्रभुपाद के विषय में सुनकर उनको काफी कौतूहल हुआ और कुछ जानने लगे। फिर ये उनका एक अपना एक वो था तो उन्होंने अपने पोते को बताया कि वास्तव में आपने जब मुझे प्रभुपाद जी के बारे में बताया तो उन्होंने लीलामृत पढ़ा, दादाजी ने लीलामृत पढ़ने के बाद फिर जब उन्होंने प्रभुपाद जी बॉस्टन कब पहुंचे उसके बारे में देखा और फिर डेट वेट भी जानकारी निकाली, एग्जैक्ट डेट प्रभुपाद जी का था 66 में वो प्रभुपाद जी पहुंचे, 65 में ना, 3 महीने पहुंच गए थे वो थे। तो सितंबर में वो पर्टिकुलर डे है प्रभुपाद अराइवल इन यूएसए, 9th सितंबर को था अभी। तो प्रभुपाद बॉस्टन में पहुंचे थे उसी दिन। तो ये जो रशियन आर्मी के भूतपूर्व मिलिट्री कप्तान थे मिसाइल शिप के, उन्होंने बताया कि 9th सितंबर को ही हम लोगों को ऑर्डर मिला था कुछ दिन पहले कि हम लोग मिसाइल जो है फायर करें अमेरिका के किसी एक जगह के ऊपर। और उस समय जब अचानक हमको 9th सितंबर को ऑर्डर मिला, हम लोग पूरी तैयारी करके रेडी थे, फिर 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, 9th सितंबर को हम लोग को ऑर्डर आया कि मत मारो, मिसाइल मत चलाओ। तो ये डिवोटी का साक्षात्कार था कि जिस दिन प्रभुपाद जी के चरण पड़े उस दिन कितना बड़ा हादसा रुक गया, इतनी बड़ी हिंसा की घटना रुक गई। अब ये इसमें कितना सत्य है क्या नहीं वो तो दादा और पोता ही जाने, लेकिन ये वास्तव में देखा गया है कि जब वैष्णव भक्तगण कोई भी कार्य करते हैं और उनका कहीं पर प्राकट्य होता है तो उनके प्रभाव से परिवेश परिवर्तित होता है। हॉलैंड में एक भक्त अपने हाथ में बुक्स लेकर मार्केट में बांट रहे थे तो पुलिस उनके पीछे लग गई, तो पुलिस तुरंत उनको गिरफ्तार करने भागी, तो ये डिवोटी भी भागा, पुलिस पीछे पीछे भागने लगी। ये भागते भागते एक गली में घुसे, उनको लगा पुलिस नहीं आएगी, वो गली में घुसे, पीछे मुड़ के देखा पुलिस वहां भाग रही पीछे पीछे, फिर एक दूसरी गली में मुड़े, उनको लगा अब थक जाएंगे पुलिस, पुलिस लगी हुई है पीछे। तो एक गली दूसरी गली तीसरी गली भागते भागते 1, 2, 3 पहुंच पहुंच कर एक ऐसे गली जहां पर लास्ट कुछ नहीं था, बोले फंस गए। अब पुलिस से बचना था तो पुलिस अभी तक टर्न नहीं मारी थी इस गली में, तो ढूंढने लगे कि यहां पर कोई एक दरवाजा है क्या जहां से मैं घुसूं। तो एक दरवाजा देखा, खोला और खोलने के बाद उसको बंद किया, बोला कम से कम पुलिस को समझेगा नहीं मैं कहां घुसा हूं। वो दरवाजे के अंदर घुसे तो दरवाजे के अंदर गए तो सीढ़ियां थी, तो सीढ़ियां से ऊपर गए तो देखा एक स्टेज था और प्रोग्राम चल रहा था, और ऊपर स्टेज के ऊपर आए और स्टेज के ऊपर आए देखा सामने लगभग 500,000 लोग बैठे हुए हैं और माइक पर एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा था और इनको देख, और जो व्यक्ति हमारे प्रोग्राम में प्राइजेस लेके आने वाले थे वो आ गए हैं, तालियां, सब लोगों ने तालियां बजाई। बोले तो पुलिस से बच के भागा था। तो फिर वो माइक वाले ने पूछा, माइक पे ही गिफ्ट लेके आए हो क्या? तो भक्त के हाथ में तो बुक्स बहुत सारे थे, बोले हाँ हाँ लेके आया हूं। लेके आए हो, तुरंत यहां हाजिर करो। वहां हाजिर किया, जितने उनके पास 40-50 बुक्स थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उन लोगों का कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, उनमें सब बंटवा दिया। फिर बाद में बोला इसका कितना बिल हुआ, पैसा भी दे दिया। और ये भक्त को कुछ समझा भी नहीं, हुआ क्या, ये लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं किससे गिरता पटकता भाग के आया, दरवाजा खुला अंदर जाके पटक के गिर गया। और पता नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि संयोगवश पुलिस से बचते हुए व्यक्ति को ऐसे प्रोग्राम के बीच में न केवल बचाया, पूरा सारा सेट्स का सेल भी एक साथ करा दिया विद कैश। और फिर उन्होंने लास्ट में पूछ ही लिया बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने, बाय द वे आपका ये प्रोग्राम क्या चल रहा है, आप लोग कौन हो? तो बोले हम लोग जो है यहां शहर के कसाई एसोसिएशन है, सारी कसाई लोग मिलकर हम लोग का कुछ प्रोग्राम चला था, उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, उसमें हमने प्राइस के लिए जो बोला था वो ना जो आ गए थे। बोले हाँ हाँ बस मैं ही हूं। तो महाप्रभु की कृपा कहां कसाईयों को मिली और किस परिस्थिति में मिली कि कोई संकल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के उद्धार के लिए ये अभूतपूर्व वैष्णव संघ तैयार किया है, और ऐसे वैष्णव संघ को सुरक्षित रखना, इसमें लोगों की श्रद्धा और तीव्र करना, ये हम लोगों का बहुत परम कर्तव्य है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस कलयुग के लिए सबसे बड़ी जो आशा की किरण है ये वैष्णव समुदाय, ये ही अगर हमारे संशय और अश्रद्धा के बादलों से आच्छादित हो जाए तो इस कलयुग के भविष्य में केवल अंधकार ही अंधकारमय तम दिखता है। तो इसलिए महाप्रभु यहां पर अपने सुंदर स्तुतियों के माध्यम से हम सभी को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वैष्णवों के गुणों को स्वीकार करो, वैष्णव करो, उन्हें प्रसन्न करो, और जब उनकी आशीर्वाद प्राप्त होगी तब जाकर वैष्णव शिक्षा और ये गीता भागवत की शिक्षा को हम स्वीकार कर पाएंगे। एक्सेप्ट द वैष्णवास, सर्व द वैष्णवास, एंड देन लर्न फ्रॉम द वैष्णवास, एंड देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्सलेंस अमंग्स द डिवोटीज एंड द प्रोपोगेशन ऑफ एक्सलेंस ऑफ द डिवोटीज should please us, inspire us, transform us, and not make us anxious and insecure. Bahut bahut dhanyavad. Hare Krishna.
Hare Krishna. Sabse pehle hum bahut hridayapurvak Gaurang Guru ko dhanyavad dena chahenge, kyunki ये हमारी जन्माष्टमी का जो सेवा का आरंभ जो हुआ था वो भी उनके प्रेरणादायी प्रवचन से हुआ था, और आज हम उस सेवा का हम अंत तो नहीं बोल सकते, लेकिन जन्माष्टमी का जो हमने पूरा ये जो सेवा का कैंपेन लॉन्च किया था वो आज, वैसे इधर राधाष्टमी के दिन ही हमारा ये कैंपेन खत्म हुआ था, लेकिन गौरांग गुरु को विनती किया था कि भक्तों के इसके लिए प्रसन्नता के लिए एक प्रवचन दे दे करके, तो इसलिए आज जो है हम बहुत हृदयपूर्वक गौरांग गुरु को धन्यवाद देना चाहेंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि जैसे ही